بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہم پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات پر گفتگو کریں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، پاکستان کا سیاسی میدان ایک بار پھر گرم ہو چکا ہے، اور یہ گرمی انتخابات تک نہ صرف یہ کہ باقی رہے گی بلکہ اس کی تپش روز بروز بڑھتی جائے گی۔ نگراں وزیر اعظم اپنے عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں، سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے کسی ایک نام پر نہ سیاسی جماعتوں میں اتفاق ہو سکا اور نہ ہی پارلمانی کمیٹی میں یہ مسئلہ ہو سکا، حل ہو سکا۔ سر انجام معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس بھیجا گیا، جس نے 83 سالہ ریٹائرڈ جج میر ہزار خان کھوسو کو عبوری وزیر اعظم نامزد کیا۔ ان کے انتخاب پر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی پاکستان نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، البتہ مسلم لیگ نون نے بغیر کسی تبصرے کے اس انتخاب کو قبول کر لیا ہے، جبکہ بعض حلقے انہیں پیپلز پارٹی کا حامی بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک نئی تبدیلی یہ آئی ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے ایک رپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی کی قیادت مکمل طور پر بلاول بھٹو کو سونپ دی ہے، اور توقع ہے کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں الیکشن لڑے گی۔ بنابراین یہ الیکشن بلاول بھٹو کی قائدانہ صلاحیتوں کی کسوٹی بھی ثابت ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سابق صدر پرویز مشرف بھی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے پاکستان پہنچ چکے ہیں، اگرچہ ان کے آنے پر زیادہ شور شرابہ نہیں ہوا۔ پرویز مشرف نے اس سے پہلے بھی کئی بار واپسی کا اعلان کیا تھا، لیکن ہر بار انتظامیہ نے اعلان کیا کہ ملک میں آتے ہی انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ بعض رپورٹوں میں تو یہاں تک کہا گیا تھا کہ انٹرپول سے بھی ان کی گرفتاری میں تعاون کی درخواست کی گئی ہے، لیکن ان کے آنے پر نہ ہی ان کے مخالف سیاستدانوں کا کوئی سخت رد عمل سامنے آیا ہے، اور نہ ہی عدلیہ اور انتظامیہ نے اب تک ان کی گرفتاری کے لیے کوئی خاص قدم اٹھایا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ اب جبکہ پاکستان میں عبوری وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا ہے اور سب کچھ آئین کے مطابق ہونے جا رہا ہے، تو اس کا کریڈٹ کس کے سر جاتا ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی منتخب جمہوری حکومت نے اپنی قانونی مدت پوری کی ہے، یہ یقیناً جمہوریت کی فتح ہے، لیکن اس فتح کا سہرا کس کے سر ہے؟ انتخابات کے آزاد اور شفاف ہونے کی کتنی امید ہے؟ عوام میں کتنا جوش و خروش پایا جاتا ہے؟ جسٹس ریٹائرڈ کھوسو کے عبوری وزیر اعظم بننے پر عمران خان کی تحریک انصاف اور جماعت اسلامی پاکستان نے جو تحفظات ظاہر کیے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے، اور ان جماعتوں کو خدشہ کس بات کا ہے؟ اور صدر زرداری نے پیپلز پارٹی کی قیادت اور صدارت مکمل طور پر بلاول بھٹو کو سونپ دی ہے، آنے والے انتخابات پر اس کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیا بلاول بھٹو آئندہ انتخابات میں اپنی پارٹی کی قیادت کر سکیں گے؟ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہم نے اسلام آباد اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہد کو۔ لندن اسٹوڈیو سے اس مذاکرے میں حصہ لیں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور ڈاکٹر قیصر امام صاحب، اور ٹیلی فون لائن کے ذریعے اس مباحثے میں شامل کیا جائے گا پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سجاد الحسن صاحب کو۔ تو چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پاکستان کی سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد صاحبہ موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ فوزیہ شاہد صاحبہ، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
جی، پاکستان کے سیاسی میدان میں کیا ہو رہا ہے؟
میرا خیال ہے کہ ایک پاکستان کے لیے خاص طور پہ ایک بہت اہم تاریخ مرتب ہونے جا رہی ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ پہلی دفعہ 65 سال میں پاکستان نے، جس طرح بھی آپ نے بھی ذکر کیا، کہ ایک بہت اہم جمہوری عمل جو ہے اس کا جو آغاز ہوا تھا 2008 میں، اس کو ایک احسن طور پہ آگے بڑھایا ہے، اور اس میں سوالات بہت سے پیدا ہو رہے ہیں. خاص طور پہ آپ نے جس سوال کی نشاندہی کی کہ یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے، یہ سہرا کس کو جاتا ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے ماضی میں بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ اٹھائے ہیں. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 73 کا آئین بنا، لیکن اس کے بعد آئین بنانے والے کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اور اس وقت کی ضیاء الحق حکومت نے جو اس ملک میں ستم ڈھائے، اس کے اثرات ہم آج بھی محسوس کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو طالبان کے حوالے سے یا دہشت گردی کے حوالے سے، یا جس طرح بات کی جاتی ہے کہ وہ ایک وہ عنصر جو اس وقت انہوں نے جہاد کے نام پہ پروموٹ کیا تھا، وہ ایک شکل میں اب پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے چیلنج بن چکا ہے. اسی طرح بعد میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ کبھی بھی جمہوری حکومتوں کے حوالے سے کوئی بھی ایسی حکومت نہیں رہی کہ جس کو آگے بڑھنے دیا جائے. خاص طور پہ جو سب سے بڑا ستم ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ حکومتیں قائم کی گئی جو دو تہائی اکثریت پہ مشتمل تھی، اس کو جس طرح برطرف کر دیا گیا. اور آپ کو علم ہے کہ پاکستان میں جو ہمارے برطرف ہونے والے وزرائے اعظم ہیں، ان کا اگر ٹریک ریکارڈ بھی دیکھیں تو کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ ان کو ایک اعزاز کے ساتھ جو ہے کسی طرح وہ ایک اپنی مدت پوری کرتے اور رخصت ہوتے، لیکن ہمیشہ یہ ہوا کہ وہ الزامات کی بوچھاڑ میں ان کو جبرن جو ہے رخصت کر دیا گیا. الزامات کی ایک بھرمار جو ہوتی تھی، اور اس کے تحت وہ ظاہر ہے کہ آئندہ کے لیے انتخابات میں جاتے تھے یا جو بھی صورتحال ہوتی تھی، یہ جو 90 کی دہائی کی ایک صورتحال ہے. 99 کے بعد ایک ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ڈکٹیٹر کے انڈر انتخابات ضرور ہوئے 2002 میں، لیکن وہ اسمبلی اس طرح تو اگر کہا جائے تو 2002 والی اسمبلی بھی جو ہے اس نے اپنی مدت جو ہے وہ پوری کی، لیکن جس طرح اس کو ایک کمانڈ حاصل تھی اوپر پریزیڈنٹ کے پاس جو اختیارات تھے، اس کو جمہوری دور نہیں کہا جا سکتا. وہ مکمل طور پہ بلا شبہ پارلیمنٹ موجود تھی، لیکن وہ ایک پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ تھی جس کا سربراہ جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف تھا. اب اس دفعہ جو ایک اہم تبدیلی جس کو دیکھتے ہیں، اور وہ سب نے ٹی وی پہ دیکھا کہ ایک پرائم منسٹر کو گارڈ آف آنر کے ساتھ جو ہے ایوان وزیر اعظم سے جو ہے رخصت کیا گیا، ان کے لیے یقیناً بہت بڑی یہ بات ہے کہ ایک وزیر اعظم یا کوئی بھی ایک جمہوری حکومت جو ہے وہ قانون اور آئین کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے. اور اس کا آخری سب سے جو بڑی ذمہ داری تھی وہ یہ تھا کہ اس نے اپنا ایک نگران وزیر اعظم کا انتخاب جو ہے لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے وہ طے کرنا ہے. وہ بھی ہم نے مرحلہ دیکھا جس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور لیڈر آف اپوزیشن چودھری نثار جو ہیں وہ ایک جگہ بیٹھے. انہوں نے یقیناً کچھ ناموں پہ انہوں نے ڈسکس کیا، اور اختلافات بھی سامنے آتے ہیں. اور جس طرح بھی آپ نے بات کیا کہ یہ معاملہ جو وزیر اعظم کیئر ٹیکر وزیر اعظم کا تھا، بلا شبہ یہ الیکشن کمیشن میں فائنل ہوا، لیکن ان تمام ناموں پہ بڑی تفصیل سے ڈیلیبریشن ہوئی تھی. اب بات آتی ہے جس دوسری جانب جس کی آپ بات کر رہے تھے، کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کو اس پہ تحفظات ہیں. تو دیکھیں، ایک بات جب قانون اور آئین ایک بناتا ہے، فیصلہ یہ کیا گیا کہ لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس پہ ایک ڈیلیبریشن ہوگی، مذاکرات ہوں گے. پارلیمنی کمیٹی جو ہے، پارلیمنی کمیٹی یقیناً وہ ہوتی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں ہوتی ہیں، اس میں ایک مشاورت کی گئی، اور اسی کے بعد وہ نام جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں گئے. اب وہ جماعتیں جو کسی وجہ سے الیکشن میں نہیں شریک ہوئیں، اور اگر وہ اس صورتحال میں اپنا ایک کردار ادا کرتی ہیں، یا وہ یہ سوچیں کہ وہ کسی طرح کا رخنا ڈالیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ قانون اور آئین سے بھی انحراف ہوگا، کیونکہ آئینی تقاضے مکمل طور پہ پورے کیے گئے. اس کے بعد ہم چاہتے ہیں جو دوسرا بہت اہم صورتحال ہے، بلوچستان کی جو صورتحال ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہاں نگران وزیر اعلیٰ کا جو تقرر کیا گیا، اور بہت سب سے زیادہ مشکل وہاں لگ رہی تھی، جس میں یہ تھا کہ آپ اسمبلی ڈیزالو جو حکومت ڈیزالو کر دی گئی تھی، اور وہاں گورنر راج تھا، लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने अपना एक बाजाबता तौर पे एक तरीका तय किया और वहाँ भी एक निगरान वजीर आला का तकर्रुर कर दिया गया। आज जो बहुत अहम इस्लामाबाद में मूव है वो पंजाब के वजीर आला के हवाले से है। एक बहुत बड़ी तब्दीली आज हुई, सुबह फैसला कर लिया गया था कि वो नाम भी चीफ इलेक्शन कमीशन को भेज दिए जाएंगे, लेकिन सूरत हाल वो एकदम उसमें तब्दीली आई और वो नाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो दो नाम दिए गए थे उनके हवाले से ये बात की गई कि उनका फैसला कर लिया जाएगा। और इस वक्त जबकि आपसे मैं इस वक्त बात की जा रही है, मुमकिन है कि वो फैसला जो है वो सामने आ जाए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी सियासी तौर पे देखा जाए तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम के हवाले से, सियासी इदारों के हवाले से पार्लियामेंट को जो क्रेडिट जाता है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जब हम पार्लियामेंट के क्रेडिट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में ऐवान सदर भी यकीनन उसका एक हिस्सा होता है, उसका जो क्रेडिट है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाता। और जो ओपोजिशन जमातें हैं खास तौर में इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबरा हैं मियाँ नवाज शरीफ, उन्होंने जो जमहूरी रवायात को एक बेहतर तौर पे आगे चलाने में मदद की है और जमहूरी तौर पे मुल्क को आगे लेके जाने के लिए जो उनका किरदार रहा है, गो उन पे बहुत बड़ा एलिगेशन रहा, उन पे मुस्तकिल एलिगेशन रहा कि ये एक फ्रेंडली ओपोजिशन है। लेकिन हमारे मुल्क में चूंकि अभी ओपोजिशन का एक तसव्वुर यही है कि उसका काम सिर्फ हुकूमत वक्त की ये समझ लें कि उसकी टांग खींचना है या उस पर एलिगेशंस लगाना है या उसको किसी ना किसी तरह ख़त्म करना है, तो चूंकि ये पहला एक तजर्बा था तो उस पर ओपोजिशन रहनुमाओं को ज़्यादा टारगेट भी किया गया कि वो फ्रेंडली ओपोजिशन करते हुए आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इसी फ्रेंडली ओपोजिशन के नतीजे में हम देखते हैं कि बहुत बड़ी कानूनी और आइनी हमने अचीवमेंट्स की हैं। मसलन हम 18वीं तरमीम की बात करते हैं, इसके साथ
जी
साथ हम 19वीं तरमीम की बात करते हैं, उसके साथ 20वीं तरमीम जिसके तहत अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं।
जी
और इस वक्त जो जिस तरह इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, और अभी आपसे यहाँ बात करने से पहले इलेक्शन कमीशन में ही हमारी एक बहुत अहम मीटिंग थी जिसमें हमने खुद एक मीडिया के हवाले से कोड ऑफ कंडक्ट दिया है। हम खुद चाहते हैं कि एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है इस तरह यकीनी बनाए जाएं कि किसी पे जो इल्जामात के हवाले से जो बात माजी में होती थी उससे हटके एक बड़ी सॉलिड किस्म के उनके मैनिफेस्टोस को लेके आया जाए, उस पर बात की जाए और उसी हवाले से मामला को एक बेहतर तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया पे उसको टैकल किया जाए। मकसद कहने का ये है कि बहुत मुतहरिक जो है इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाया गया है और अभी जो केयर टेकर्स अगर गवर्नमेंट्स की बात की जाती है या वज़ीर आज़म या वज़राए आला की बात की जाती है तो इसमें एक बात हमें हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि उनका किरदार हमें बहुत महदूद लगता है, क्योंकि ये इस वक्त तमाम जो हम एम्पावर कर दिया गया है वो इलेक्शन कमीशन को कर दिया गया है। और पाकिस्तान में एक बहुत जो अहम बड़ी तब्दीली है वो इस वक्त का वाइब्रेंट मीडिया है। पाकिस्तान में मीडिया इस कदर इस वक्त फाल है कि कहीं किसी जगह चाहे वो वजीर आजम की सतह पे बात करें या किसी जगह भी ये नहीं कहा जा सकता कि उसको किसी भी सतह पे कोई ऐसा किसी सियासी जमात के खिलाफ कोई काम हो सकता है या कोई प्राइम मिनिस्टर जो है केयर टेकर वो कोई इस पे असरअंदाज हो सकता है कोई पॉलिसी। मैं समझती हूँ कि अगर कोई भी अगर ये केयर टेकर ना भी होते जो हुकूमत थी अभी अगर वही कंटिन्यू करती तो भी फेयर एंड फ्री इलेक्शंस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को एम्पावर कर दिया गया है, मीडिया का एक किरदार सामने आ रहा है, आज़ाद अदलिया हमारे यहाँ मौजूद है। तो अगर निगरान का एक वो ना भी किया जाता तो इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि एक बहुत बेहतर तौर पे आगे सियासी अमल चल सकता था और बहुत खूबसूरती से चल सकता था। दूसरी जानिब अभी जो है सियासी जमातों के क्योंकि अभी इलेक्शन जो टिकट हैं जो उम्मीदवारों को देने का फैसला बहुत कम जगह पे हुआ है जिसकी वजह से एक्टिविटीज़ उस तरह हम नहीं कहते, गो कुछ जलसे बहुत अहम हुए हैं सियासी जमातों की जानिब से। एक पीटीआई का जलसा बहुत अहम हुआ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले ने एक बहुत अहम जो है उनकी एक्टिविटीज़ जारी हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इंतखाबी एक उन्होंने अपनी तय शुरू करना है अमल या इंतखाबी उनकी जो मुहिम का आगाज़ होगा वो उन्होंने 4 अप्रैल तक रखा है। 4 अप्रैल उनके जो बानी चेयरमैन है जुल्फकार अली भुट्टो, उनकी बरसी का मौका है और वो गढ़ी खुदाबख्श में वहाँ से जलसे से आगाज़ करने जा रहे हैं। उसके बाद असल जो एक्टिविटीज़ हैं वो सामने आना शुरू होंगी,
जी, शुक्रिया
लेकिन
बहुत।
जोड़ तोड़ की सियासत जो है वो बहुत अरूज पे है, जिसकी वजह से अक्सर जो मुबसरीन है, और मैं ज़ाती तौर पे भी समझती हूँ कि जो जिस तरह एक बहुत बड़ी इस वक्त भीड़ लगी हुई है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने की, वो शायद सियासी अमल के हवाले से कुछ ज़्यादा सेहतमंद करार नहीं दी जा सकती, क्योंकि ज़्यादातर वो लोग हैं कि जो 10 साल एक जमात में रहे और वहाँ से वो जो मुख्तलिफ सीटों के लिए टिकट होल्डर भी रहे, लेकिन अब वो दूसरी जमात में जाके एक उसके लिए टिकट की बात कर रहे हैं। ये एक शायद ज़्यादा जो है सेहतमंद बात नहीं है, सियासी जमातों को भी इस पे सोचना चाहिए
जी,
और यकीनन ऐसा एक कोड ऑफ कंडक्ट भी होना चाहिए कि तमाम सियासी जो कारकुन हैं वो अगर उनकी वाबस्तगी चेंज होती है तो जो बिल्कुल इंतखाबात से कबल जो वाबस्तगी तब्दीली है उस पे भी यकीनन कोई तवज्जो दी जानी चाहिए, या अगर हो सके पाबंदी भी होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है।
जी
लेकिन
शुक्रिया।
ये है कि पाकिस्तान एक बहुत अहम तजर्बे से गुजर रहा है और ये वो तजर्बा है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक इस्तेकाम की तरफ जाने को है, सियासी इस्तेकाम की, और इसके साथ साथ अभी ये ऊपर तले जो दो एक बहुत अहम मायदे हुए हैं उसको भी हम बहुत अहमियत के हामिल समझते हैं, खास तौर पे ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन
शुक्रिया
का मायदा
फौजिया
है
शाह साहबा।
उसको पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम।
जी शुक्रिया, आपसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। और नाज़रीन चलते हैं लंदन स्टूडियो, जहाँ बरे सगीर के मुमताज़ दानिश्वर डॉक्टर कैसर इमाम साहब मौजूद हैं। कैसर इमाम साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
कैसर इमाम साहब, पाकिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म के बारे में आपकी राय क्या है?
बड़ा अच्छा सवाल है। इन हालात में मैं समझता हूँ कि अबूरी वज़ीर आज़म का जो तकरर हुआ है, जिस तरह से उसका इंतखाब हुआ है, वो नहायत ही सही तरीके से हुआ है। जो आईन में तरीक़ेकार दर्ज था उसके मुताबिक हुआ है। अगरचे उसमें थोड़ी ताखीर हुई है, लेकिन उस ताखीर में भी मैं समझता हूँ कि कानून और आईन को मलहूज रखा गया है। और ये बहुत खुशायंद बात है कि तमाम जमातों ने उस पर इत्तफाक किया है। ये बिल्कुल अलग बात है कि कोई भी शख्स जो है वो ऐसा नहीं होता जिसको आप मुकम्मल तौर पर कह कि वो गैर जानबदार है। हर मामले में कोई भी शख्स गैर जानबदार नहीं होता, उसकी पसंद नापसंद बहरहाल होती है। और मौजूदा जो नए जो निगरान वजीर आजम आए हैं, उनके मुतल्लक ये कहा जाता है, बाज हलकों में ये बात कही गई है। खास तौर पर पीटीआई के एक लीडर ने ये बात बड़ी साफ तौर पर कही है कि उनका माजी जो है वो पीपल्स पार्टी के थोड़ा सा उसकी तरफ इंक्लाइंड रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये सारी बातें बिल्कुल बेकार हैं। असल बात यह है कि चूंकि इलेक्शन में सबसे ज्यादा इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को हासिल होंगे, और जो निगरान वजीर आजम है उसका काम जो है वो सिर्फ रोजमर्रा के मामलात को देखना होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ये सारी बातें फरूई हैं, और मेरे ख्याल में वो एक नहायत उम्दा इंतखाब है जो किया गया है। खास तौर पर इस लिहाज से भी कि वो ना तो बड़े सूबों से किया गया है, ना किसी बड़ी पार्टी की तरफ से किया गया है। लिहाजा मेरे ख्याल में ये बात बड़ी मुनासिब है। मैं समझता हूँ कि वो सही इंतखाब है जो किया गया है। अब देखना ये है कि उनके लिए जो हालात बनाए जाते हैं जिनमें वो काम कर सकें, वो हालात कैसे हैं। क्योंकि इससे पहले जो कुछ आपको पता है कि जो तरीक़ेकार था, वजीर आजम अगरचे नाम का तो था, लेकिन उस पर होल्ड जो था वो मुकम्मल तौर पर सदर साहब का था। हुकूमत सदर साहब कर रहे थे, वजीर आजम नहीं कर रहे थे। ये सिचुएशन अगर पैदा हुई इस तरह की तो ये मुनासिब नहीं होगी। लेकिन अगर इस वजीर आजम को वजीर आजम के तौर पर काम करने दिया गया तो ये बड़ी खुशायंद बात होगी। सो मेरे में ये निहायत ही उम्दा इंतखाब है जो किया गया है। जी
ने टेलीफोन लाइन पर हमारा राबिता बरकरार हुआ है पीपुल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सज्जादुल हसन साहब से। سجاد الحسن صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب آنے والے انتخابات میں آپ کی پارٹی کی قیادت کون کر رہا ہے؟
دیکھیے جی بات یہ ہے ہماری پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں تو ہماری پارٹی کی قیادت بلاول بھٹو زرداری بطور چیئرمین کر رہے ہیں. آنے والے دنوں کی تو بات ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے چیئرمین ہیں, وہ تو قیادت کر رہے ہیں.
تو یہ جو خبر ہے کہ آصف علی زرداری نے پوری طرح سے پیپلز پارٹی کی قیادت بلاول بھٹو کو سونپ دی ہے, اس کے پیچھے کوئی اہم معاملہ ہے؟
نہیں, اہم معاملے والی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. چونکہ زرداری صاحب نے جس وقت پیپلز پارٹی کی کمان سنبھالی تھی تو اس وقت بلاول بھٹو زرداری اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر رہے تھے.
جی,
تو اب انہوں نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر لی ہیں, تو اسی وقت پریزیڈنٹ زرداری نے کہا تھا میں تو ایک عارضی طور پر آیا ہوا ہوں, ایکچوئل چیئرمین جو ہے, جو اس پارٹی کا جو چیئرمین ہے وہی اس کو لیڈ کرے گا. تو بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر دیا, زرداری صاحب نے ان کو ہینڈ اوور کر دی ہے پارٹی. یہ جو ابھی صاحب فرما رہے تھے, مجھے ان کا نام نہیں پتا, میرا
قیصر امام صاحب
لیٹ ہوا, ان کا کیا گڈ نیم ہے جی؟
قیصر امام صاحب, ڈاکٹر قیصر امام.
جی میں ڈاکٹر قیصر امام صاحب کی بات جو ہے اس کو ڈینائی کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ خدا را کوئی تو بات ہم لوگ مان لیں کہ زرداری صاحب پاکستان کے پہلے صدر ہے جنہوں نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو سونپے ہیں. زرداری صاحب پاکستان کے پہلے صدر ہیں کہ جنہوں نے پانچ کے پانچ پارلیمانی سالوں میں اسمبلی سے ایڈریس کیا ہے. زرداری صاحب نے یوسف رضا گیلانی کو پرائم منسٹر بنایا ہے. زرداری صاحب نے, ان کی پارٹی نے راجہ پرویز اشرف کو پرائم منسٹر بنایا اور فل پارٹ کے ساتھ. یہ پرسپشن, یہ بات بالکل غلط ہے. میں اس کو کیٹاگوریکلی بڑا سٹریٹ فارورڈ ریفیوز کرتا ہوں کہ جی پاور زرداری صاحب یوز, زرداری صاحب نے تو پاورز اپنی دے دی پارلیمنٹ کو, وہ کون سی پاور یوز کرتے رہے. افسوس کی بات ہے پارٹی کے وہ کو چیئرمین بھی ہیں, اس حوالے سے پارٹی کے معاملات لوگ کافٹر کرتے ہیں, مگر تکلیف کا امر یہ ہے کم از کم یہاں پر چیف منسٹرشپ ہو لاہور کی یا پرائم منسٹرشپ ہو پاکستان کی, تو میاں نواز شریف صاحب کا نام آئے گا, میاں شہباز شریف صاحب کا آئے گا, حمزہ شہباز کا آئے گا, مریم نواز کا آئے گا, کلثوم نواز کا آئے گا. پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو پرائم منسٹر بنایا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے راجہ پرویز اشرف جیسے ورکر آدمی کو پرائم منسٹر بنایا ہے. تو یہ بات وہ کرنی چاہیے جو حقائق پر مبنی ہو. صرف میڈیا پر بیٹھ کر ایک پراپوگنڈا اور ایک صرف گفتگو کی حد تک گفتگو نہیں کرنی چاہیے.
بہت بہت شکریہ, لائن پہ رہیے گا سجاد الحسن صاحب. فوزیہ شاہی صاحبہ, آپ کیا کہتی ہیں, گزشتہ پانچ برسوں کے دوران صدر آصف علی زرداری نے اپنے اختیارات کم کیے ہیں یا حکومت پر اپنے اختیارات باقی رکھے؟
دیکھیے میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ جو 18ویں ترمیم کی گئی اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ مکمل طور پہ پارلیمانی نظام جو ہے, پارلیمنٹ کو جو ہے امپاور کیا گیا, یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جب دیکھتے ہیں, خاص طور پہ جب ایوان صدر جو پیچھے ہمارا صدر تھا, جس طرح میں نے پہلے بات کیا کہ چیف آف آرمی سٹاف بھی تھا, تمام اختیارات جو ہیں مکمل طور پہ ایوان صدر میں تھے. اور ہم 73 کے بعد سے دیکھتے ہیں, 77 سے اب تک جو ہیں, ایک جو ایوان صدر کو اتنا پاورفل بنا دیا گیا تھا کہ وہ 58 بھی کسی وقت بھی اس کا عمل, وہ اس کا نفاذ کر سکتا تھا, کسی وقت بھی پارلیمنٹ کو ختم کر سکتا تھا. لیکن تمام یہ اختیارات جو صدر پاکستان کو حاصل تھے وہ پارلیمنٹ کو دے دیے گئے, وہ پرائم منسٹر کو دے دیے گئے. پرائم منسٹر کی سمری کے بغیر جو ہے صدر پاکستان ظاہر ہے کہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تھے. تو یہ پارلیمانی نظام جو ہے اس کو ایک مکمل طور پہ اس کو مضبوط کیا گیا. جہاں تک تعلق آتا ہے صدر آصف علی زرداری کا, اور اگر اس کو ظاہر ہے قانونی طور پہ, آئینی طور پہ دیکھیں تو وہ اختیارات انہوں نے وزیر اعظم کو دیے, پارلیمنٹ کو دیے. لیکن پارلیمنٹ کے, اور جہاں تک سوری پارٹی کے جو تعلقات ہیں, جہاں پارٹی کے اندر کے جو معاملات ہیں, پارٹی کے کو چیئرمین کے طور پہ انہوں نے اس کو ضرور کیا ہے. اور وہ بھی یہ ہے کہ جس طرح جب پارلیمنٹ میں ان پہ پابندی لگ گئی تھی کہ ایوان صدر میں ایکٹیویٹیز پہ, تو وہ اپنے مختلف نجی سطح پہ جو ہے وہ اس طرح پارٹی کے معاملات کو دیکھتے رہے. तो ये कोई भी पार्टी का सरबराह होगा तो पार्टी को तो उसने बरकरार रखना है, लेकिन ये एलिगेशन के तमाम जो मामलात हैं वो ऐवान सदर में होते रहे, मैं इससे इतफाक नहीं करती, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी मुकम्मल तौर पर बाख्तियार तौर पर अपने इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल करते रहे, और उनके अगर आप ये देखते हैं तो उन पे जो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में कुछ इल्ज़ाम भी लगे तो वो यकीनन उनकी अपनी ज़ात के और अपने उनके हवाले से आए और उन्होंने अपने फैसले जो हैं वो खुद उस पर किए। हाँ, वो उन्होंने यकीनन अपनी काबीना के तश्कील के हवाले से मशवरा पार्टी के चेयरपर्सन से चेयरमैन से किया होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती, या इस तरह पार्टी के जो दूसरे मामलात हैं पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि एक तो हुकूमत की पॉलिसीज़ होती है दूसरी पार्टी की पॉलिसीज़ होती हैं, पार्टी की पॉलिसीज़ के लिए उन्होंने यकीनन सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो उनके को चेयरमैन थे उनसे उन्होंने मशावरत की होगी, लेकिन जो हुकूमती मामलात हैं उसमें अगर हम ये देखते हैं तो वो ज़्यादातर काफ़ी हद तक खुद मुख्तारी से वो अपने फैसले करते रहे और बहुत सी चीज़ें जो सामने आई उसमें उन्होंने अपनी जो पावर है उसको इस्तेमाल किया। तो मैं ये समझती हूँ कि ये चीज़ें अब इन बहस में पड़े बगैर आगे चलना होगा, और जाहिर है कि सियासी जो है कोई भी सियासी जमात होगी जब वो वोट उसी को देगी जो उनकी पार्टी का बंदा होगा, तो ये एक भी एक एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि पार्टी के चूंकि को चेयर मैन थे उन्होंने पार्टी को एक बेहतर तौर पे वक्त दिया, उसने हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की, तो ये चीज़ें भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख में एक अहम समझी जाती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अब इन एलिगेशंस में इनमें पड़े बगैर आगे जो एक वक्त आने वाला है उस पर तवज्जो देनी चाहिए, आइंदा इंतखाबात पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, और आइंदा इंतखाबात में उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं कि आप अपने अपने मैनिफेस्टोस के साथ तमाम सियासी जमातें आएँ और उसी पर डिस्कस किया जाए। जी
बहुत बहुत शुक्रिया जी। कैसर इमाम साहब, जनाब परवेज मुशर्रफ की वापसी पर आपका तबसरा क्या है?
ये बहुत दिलचस्प बात है, परवेज मुशर्रफ साहब एक ऐसे मौके पर पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं जब मुल्क में इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए गए हैं और बड़ी खुशअसलूबी से इलेक्शन कमीशन ने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया है। उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब यहाँ आए हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान बचाने के लिए आए हैं, पहले तो ये मालूम नहीं कि वो किससे बचाना चाहते हैं। दूसरी बात जो समझ में नहीं आती वो ये है कि उनका लाहा अमल क्या होगा, वो किस तरीके से बचाना चाहते हैं। अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनकी पार्टी जो है वो कोई ऐसी अभी ऑर्गेनाइज्ड नज़र नहीं आती कि वो कोई नशस्तें हासिल कर सके। ये हो सकता है कि जनरल मुशर्रफ अपने तौर पर कोई नशस्त हासिल कर लें, लेकिन क्या एक दो चार पांच नशस्तें हासिल करने से वो पाकिस्तान के हुक्मरान बन जाएंगे, और क्या वो इस तरह से पाकिस्तान को उन ताकतों से बचा सकेंगे जिनका किसी को पता नहीं कि वो किससे बचाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में वो बगैर किसी लाहा अमल के तशरीफ लाए हैं, उनके पास कोई वाज़े लाहा अमल नहीं है, कोई वाज़े मकसद जो है वो नहीं है। नारा जो है वो बड़ा अच्छा है कि वो पाकिस्तान बचाना चाहते हैं, लेकिन किससे बचाना चाहते हैं कुछ मालूम नहीं है। सो मैं समझता हूं कि वो ऑर्गेनाइज्ड पार्टी अभी उनकी है नहीं, उनके जो लोग हैं कौन कहाँ से खड़ा होगा, उसकी अपनी क्या हैसियत है, उससे पहले उसने क्या किया है, ये सारी बातें अभी तय नहीं हैं। और ये कब तय होंगी, क्योंकि इलेक्शन तो सर पर है, ये कब तय होंगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। सबसे बड़ी अहम बात यह है वो ये है कि उनको जिस तरह का सिक्योरिटी के नाम पर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इन हालात में वो किसी बड़े जलसे में खुलकर बात नहीं कर सकेंगे, वो इस तरीके से सामने नहीं आ सकेंगे जिस तरह से नवाज शरीफ या इमरान खान आ सकते हैं, और जिस तरह से मैं समझता हूं कि कोई दूसरी पार्टी के लोग जो हैं वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी जो है वो उनके लिए एक बड़ा मसला है। सो मेरे ख्याल में जनरल मुशर्रफ की आमद जो है वो इन हालात में वो कोई अपना खास असर पैदा नहीं कर सकेंगे मौजूदा सियासत में, उनके लिए उनके पास कोई प्रोग्राम जो है वो तयशुदा नहीं है। पाकिस्तान बचाओ बहुत अच्छा नारा है, लेकिन ये नारा जो है ये वेग है, इसके ये समझ किसी को नहीं आ रहा।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सज्जादुल हसन साहब। आप लाइन पे रहे जनाब?
मैं लाइन पे हूं
जी। परवेज मुशर्रफ के आने से पाकिस्तान की सियासत में क्या तब्दीली आ सकती है?
देखिए जी, बात यह है कि परवेज मुशर्रफ गो के साबिक एक जनरल है, एक डिक्टेटर है, मगर वो इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी को हेड कर रहा है
जी।
खुल्ला माला जब इलेक्शन का टाइम है तो पॉलिटिकल पार्टी के हेड भी जो है वो मुल्क में आते हैं। तो ये बात तो जुमा जुमा 8 दिन पुरानी है कि मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ 2008 में मुल्क में आए नहीं है, उससे पहले वो मुल्क से बाहर गए हुए थे, तो और मुल्क से बाहर रहे हैं। तो जो ये बात करनी है कि भाई वो इस वक्त क्यों आए, तो एक इलेक्शन आ गया, एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, वो मुल्क में आया, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहा है। तो बात ये है कि यहाँ पर क्रिटिसाइज प्रेसिडेंट जरदारी साहब को तो किया जाता है, ये भी तो सोचिए कि पाकिस्तान को बने हुए 65 ईयर हो गए, इन 65 सालों में क्या कोई असेंबली बगैर किसी छतरी के अपना टाइम मुकम्मल कर सकी? ये क्रेडिट क्यों नहीं दिया जा रहा प्रेसिडेंट जरदारी को कि ये उन्हीं का क्रेडिट है कि 5 साल उन्होंने इस असेंबली के पूरे किए, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि किसी पॉलिटिकल प्रोसेस में आई गवर्नमेंट जो अपना टेन्योर कंप्लीट करके गई है। और जरदारी साहब की बात की जाती है पावर की, मैं एक बात आपको बताता, जरूर पंजाब में आप देख लें 22 पोर्टफोलियोज चीफ मिनिस्टर अपने पास रख के बैठा है, जिनको वो सेक्रेटरी साहबान और एडवाइजर्स के जरिए जिनको वो पूरे 5 साल चलाता रहा है। मतलब खुदा रहा अब टाइम नहीं है, हमें हमें हकायक की तरफ लौटना पड़ेगा, हकायक पर बात करनी पड़ेगी। हम अब जिस स्टेज की तरफ जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए जरूरी है कि हम हकायक को मद्देनजर रखते हुए, ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए अपने रुख को सीधा करें और तरक्की की जानब अपने मुल्क को ले चलें। कम अज कम बिला मकसद, बिला जवाब तनकीद बराए तनकीद से अवॉइड करें। तो इस हवाले से मेरी ये गुजारिश है कि परवेज मुशर्रफ आए हैं, मोस्ट वेलकम, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और इलेक्शन का जो है वो शेड्यूल आ चुका है, तो लामाला वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एक्टिव करेंगे और इस मुल्क में उनका जितना रोल होगा उनको अदा करना चाहिए अपनी इस मुल्क की पॉलिटिक्स में, इस मुल्क की बेहतरी में। वो भी इस मुल्क के शहरी हैं, वो भी इस मुल्क के बसी हैं। अभी अभी ठीक है, उनका पुराना चेहरा एक बड़ा खौफनाक था कि वो इस मुल्क में बतौर डिक्टेटर रहे, तो वो जो उनकी सजा है वो उनको कोर्टों ने देनी है, तो वो उनके मामला अदालतों में, अदालतें खुद ही उनसे कर लेंगी। मगर इस वक्त तो वो एक सिविलियन है और सिविलियन पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, तो वो अपना किरदार अदा करें आके इधर, और हमें तो खुशी है कि वो आए अपना किरदार अदा करने के लिए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, लाइन पे रहिएगा। फौजिया शाही साहबा, क्या मुशर्रफ साहब पाकिस्तान की सियासत में अपने लिए कोई जगह बना सकते हैं?
देखिए मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि सियासी सतह पे तो उनका कोई मुझे मुकाम दिखाई नहीं देता। पहले भी जो जनरल्स हैं, चाहे वो हमीद गुल हैं, चाहे वो असलम बेग हैं, इन्होंने भी एक सियासत में अपना मुकाम बनाने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन आवाम जो है वो बहुत बाशऊर हैं और मैं नहीं समझती कि वो किसी तरह भी समझते हैं कि एक ऐसा गासिब जो है, जो ताले आजमा है, जिसने आवाम के बुनियादी हकूक सलब किए, उसको एक सियासी सतह पे उसको कोई मकाम दें। ये ज़ाती तौर पे, और मैं ये ज़ाती तौर पे मैं बिल्कुल इख्तलाफ करती हूँ जो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे थे कि हमें जब तक इन लोगों को जो मुल्क में कानून को तैयार वाला कर देते हैं, इससे बड़ा गुना जुर्म कोई नहीं होगा कि आप आवाम के 18 करोड़ आवाम कह लीजिए या 20 करोड़ जितनी भी आबादी है उस के जो है बुनियादी हकूक सलब कर दें और वन मैन रूल जो है वो कायम कर दें, और उन वन मैन रूल्स की सूरत में हमने जो नुकसान उठाया, अभी अगर हम दहशतगर्दी की जंग की बात करते हैं, अमेरिका को हमने अपने सर पे बैठा के इस तरह मुसल्लत कर लिया है कि आप सांस भी जो है अमेरिका से पूछ के ले रहे हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर तो समझती हूँ कि ये कोई भी किरदार ऐसा जो इस तरह का मुल्क के साथ एक खिलवाड़ करता है, उनको मैं नहीं समझती कि किसी तरह भी कोई पजीराई दी जानी चाहिए, या उनको अगर सियासी तौर पर भी वो आते हैं तो उनको कोई खुला मैदान दिया जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो मुल्क के हमारे मुजरम हैं, उनको मुजरम के कटहरों में ही जो है रखना चाहिए, और कोई जवाब ये पेश नहीं कर सकते कि असेंबली उन्होंने क्यों तोड़ी थी, क्यों कब्जा किया था और किस तरह, क्या उनके कौन सा कानून था, किसके तहत वो 10-11 साल हुकूमत करते रहे, वो एक टेलीफोन की डिक्टेशन पे जो है मुल्क की तकदीर बनाते रहे। तो मैं तो जाती तौर पर बहुत ज्यादा इस हवाले से थोड़ा सा सख्त रवैया रखती हूँ। मैं समझती हूँ कि किसी तरह भी उनको, मीडिया पे भी मैं समझती हूँ कि कोई ये, जब तक हम मीडिया वाले भी ये तफरीक नहीं करते कि मुल्क के लिए किसने क्या किरदार अदा किया, अगर हम मीडिया पे भी उसको उसी तरह पजीराई देंगे तो ये हमारे लिए भी बायस शर्म है। और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल तकसीफ जो है लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, और ये कोई तरीका नहीं है कि एक मुजरम है, जिस तरह भी 62-63 की शिक की बात की जा रही है, तो किस तरह इस शख्स को जिसने पूरे मुल्क तबाह किया उसको 62-63 की शिक में किस तरह क्लियर किया जा सकता है। तो ये एक जो रवैया एक सियासी तौर पर कि जी अकोमोडेशन का, ये किसी तरह भी मैं जायज नहीं समझती।
बहुत बहुत शुक्रिया कैसर इमाम साहब। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान में पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि सब कुछ आईन के मुताबिक होने जा रहा है, इसका क्रेडिट आपके ख्याल में किसके सर जाता है, आईन की बालादस्ती और जमहूरियत का दबाव? जी
देखिए, मेरे ख्याल में इसमें सबसे अहम मकाम जो है वो अदालत और यानी अदलिया और मीडिया, इसका ज्यादा जिम्मेदार है मेरे ख्याल में। और उसके बाद मैं समझता हूं कि पीपल पार्टी की जो हुकूमत थी उसने भी अपना किरदार जो है वो अदा किया है, अगरचे ये कहा जा सकता है कि उनकी गवर्निंग जो है वो कोई मयारी न रही, लेकिन इसके बावजूद उसका एक किरदार जो है वो मौजूद है कि उसने मीडिया को और अदालत को फेस किया है, सही तरीके से या गलत तरीके से ये अलग बात है। सो मेरे ख्याल में ये तीनों अपने अपने मकाम पर इस बात के जिम्मेदार हैं कि मुल्क में जो फजा है वो आईन और कानून की हुक्मरानी की तरफ चल रही है। इसमें एक और बहुत अहम बात जो है वो उसका जिक्र करना बड़ा, मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब नहीं होगा, कि पीपल पार्टी जो है वो दो पीपल पार्टियां हैं मुल्क में, एक जो है जिसके मतलब अदालत में ये मौकफ इख्तियार किया गया है कि वो एक एनजीओ है जिसके जरदारी साहब सरबराह हैं, और दूसरी जो है वो पार्लियामेंटेरियन ग्रुप है जिसके सरबराह अमीन फहीम साहब हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये एक चीज ऐसी पैदा की गई है जिसकी वजह से, और ये सिर्फ इसलिए पैदा की गई है कि सदर साहब जो हैं वो सदारत के बावजूद सियासत में हिस्सा लेते रहे, और वो लेते रहे हैं बाकायदा। सो इस सिर्फ इस बात के लिए कि वो ये ऐसा कर सकें, उसको एक एनजीओ के तौर पर सामने लाया गया है, ये बड़ी एक दिलचस्प सी बात है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब सियासत में दूसरे लोगों से ज्यादा अहम साबित हुए हैं, उन्होंने ये साबित किया है कि वो बेहतर सियासतदान हैं, बड़े सियासतदान हैं वो। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि मीडिया ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, और अदलिया ने जो किरदार अदा किया है वो बहुत नुमायां है, उसने कानून की हुक्मरानी के लिए बहुत काम किया है, दिन रात काम किया है। सो मेरे ख्याल में अदलिया और जो मीडिया है उसके बाद हुकूमत को इसका क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया सज्जादुल हसन साहब। जनाब पाकिस्तान में बहरहाल पहली बार किसी जमहूरी हुकूमत ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी की है, आईन की बालादस्ती और जमहूरियत के दवाम का सारा क्रेडिट क्या सिर्फ हुकूमत और पीपुल्स पार्टी की क्यादत को जाता है या दूसरे अवामिल भी इसमें शामिल है?
देखिए जी, बात यह है कि ना सिर्फ असेंबली ने 5 साल मुद्दत पूरी की है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने हमेशा कहा कि आईन और कानून के मुताबिक हैंडिंग टेकिंग ओवर होगा। आपने देख लिया वफाक और चारों सूबों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतहाई आइन के मुताबिक शफाफ जो है अपोजिशन के साथ मुशावरत के बाद और हैंडिंग टेकिंग ओवर कर दिया। प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर आ गए, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहबान आ गए, तो ये पाकिस्तान की तारीख में एक आम संग मील है और एक इंतहाई सुनहरे अल्फाज में लिखे जाने वाले वाकियात हैं, और इसका क्रेडिट बिना शुबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और स्पेशली प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी को जाता है कि जिन्होंने इस सारी चीज को यकीनी बनाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत ने उस पर अमल दरामद करवाया। अब जहां तक ताल्लुक है बाकी अवामिल का, देखिए जी बात यह है, बाकी अवामिल तो हमेशा पहले भी थे और अब भी हैं, मगर इसमें हमेशा से ये देखा गया कि हमेशा से जब भी जमहूरियत पर शब खून मारा गया तो प्रेसिडेंसी की तरफ से किया गया और वो 58(2)(b) का इतलाक किया गया, मगर मौजूदा प्रेसिडेंट ने तो अपनी पार भी सारी पार्लियामेंट को दे दी और विदड्रॉ कर लिया, और उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि जमहूरियत इस मुल्क में पनपे पले बढ़े और इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाए। तो बात तो ये करने की है कि ठीक है इसमें जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरसरे इकतदार आई थी, आप देखें कि इधर हालात उस वक्त क्या थे, इंटरनेशनली जो है वो फाइनेंशियल क्रंच था और उसके बाद 2 साल मुसलसल सैलाब आता रहा, उससे पहले जलजला था, तो उसके बाद ये दहशतगर्दी जो थी पूरा मुल्क लपेट में था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे इतने सारे क्राइसिस थे। लामाला इंसान अकले कुल नहीं होता, इंसान से गलतियां होती रहती हैं, मगर इंसान गलतियों से सीखता जाता है और बेहतरी की तरफ गामजन होता जाता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी हुकूमत ने अल्लाह के फजल से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की क्यादत में एक इंतहाई खूबसूरत और सुनहरा जो है टाइम गुजारा है। आप सिनेरियो को भी देखें ना कि इंटरनेशनली और नेशनली सिनेरियो भी क्या था और किस हद तक क्राइसिस थे, तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखकर जब आप देखेंगे तो आपको मामला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेटर ही नजर आएंगे और बेहतरी की तरफ जाते हुए ही नजर आएंगे। जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, इस हाथदार जो थे उन्होंने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर चार्ज लिया था, चूंकि कोलेशन गवर्नमेंट थी तो उन्होंने तो उसी दिन अनाउंस कर दिया कि हमारे पास तो खजाना बिल्कुल खाली है, तो मकसद वो हिसाबदार हमारे प्राइम मिनिस्टर जो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, चूंकि हम हमारे वो कोलेशन थे तो वो हकाइक से बखूबी आगाह हो गए। और मैं समझता हूँ कि वफाक में उस स्टेज पर मुस्लिम लीग नून का अलग होना ऐसे ही था कि एक तो इसहाक डार साहब ने ये उस वक्त बयान दे दिया और दूसरा उन्हें नजर आ रहा था कि हम अलग हो जाएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट शायद वो ये जो है ये धड़ाम से आग लेगी, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने साबित किया कि कितने भी कैसे ही परेशान कुन और कितने भी मुश्किल हालात हों, हम लोग जो है वो हालात का मुकाबला करते हैं। उसकी मेन वजह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समंदर के जजीरों से लेकर गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक मौजूद है, बाकी कोई पार्टी नहीं है, बाकी पार्टियां तो सिर्फ इलाकाई पार्टी है, कोई जीटी रोड की पार्टी है और कोई किसी जिले की हद तक पार्टी है, ये वाहिद पार्टी है जिसको ये शरफ हासिल है। तो आइंदा भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको दावे से कहता हूँ कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
बहुत शुक्रिया देगी
और इस मुल्क को बेहतरी, आप देखे ना कि आखिरी अयाम है हुकूमत के, मगर हम तो नेशनली और इंटरनेशनली किसी प्रेशर में नहीं आए। इस मुल्क को जरूरत है गैस की, प्रेसिडेंट ने ईरान के साथ मुआहदा किया है और उस पर काम भी शुरू हो गया है, गवादर बंदरगाह है, अब उधर चाइना को हैंडओवर की है, तो ये चीजें सारी मैं मानता हूं कि लेट हुई है, इसमें कोई शक नहीं, मगर उनके देर होने में आप उसका उसको इंटरनेशनल सिनेरियो में भी देखें कि हम पूरी दुनिया के साथ खड़े हैं, इधर ये अब एक दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, यहाँ पर अकेले तो बैठ के जो है वो जिंदगी इंसान नहीं गुजार सकता ना, कोई भी मुल्क नहीं अकेला।
जी शुक्रिया सज्जादुल हसन साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त जी अपने अख्तिताम को पहुंच रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाजरीन प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतजार रहेगा, हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@thereteofsahartv.ir, और इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज़।